नमस्कार
जी।
आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं आम धारणा पर पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जी
अक्सर हम सब यही मानते हैं या सुनते आए हैं कि भाई तीर्थ यात्रा कर लो या कुछ पूजा पाठ कर लो तो पाप धुल जाते हैं, गलतियां सुधर जाती हैं।
जी।
पर क्या ये वाकई इतना सीधा है?
ये सवाल तो है।
हाँ, तो पूज्य गुरुदेव का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन है ऐसी पर, तीर्थ यात्रा बनाम प्रायश्चित प्रक्रिया।
जी
बिल्कुल। और हमारे पास स्रोत के रूप में पूज्य गुरुदेव का यही उद्बोधन है। ये हमें इन दोनों चीजों के, मतलब तीर्थ यात्रा और प्रायश्चित के, असली मतलब को समझने की एक नई दृष्टि देता है जो शायद हमारी आम सोच से काफी अलग हो।
हाँ, ये बात तो है।
तो चलिए इस विचारोत्तेजक विषय को जरा खोलते हैं। पूज्य गुरुदेव शुरू में ये बात साफ कर देते हैं कि देखो, केवल मंत्र जपने से या किसी देवी देवता के आगे बस नाक रगड़ने से या कोई खास पूजा पाठ, कोई कर्म कांड करने भर से आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं मिल जाता।
सही।
पापों का हिसाब तो वो कहते हैं चुकता करना ही पड़ता है।
बिल्कुल। उनका यही कहना है कि जो गलतियां हुई हैं, जिनसे किसी को दुख पहुंचा है, किसी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो करनी होगी। वो जो पुरानी खाई बन गई है ना, उसे पाटना होगा। और ये सिर्फ भावना या मन में पछताने तक की बात नहीं है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब इसे सिर्फ सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से नहीं ले सकते।
और यहीं पर यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने इसे समझाने के लिए जैसे आम्रपाली और अंगुलीमाल, इनके उदाहरण दिए हैं।
हाँ, बहुत सशक्त उदाहरण है ये।
ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत गंभीर पाप किए थे, है ना? लेकिन उनका प्रायश्चित हुआ कैसे? क्या सिर्फ कुछ दान दे दिया या माफी मांग ली? नहीं
नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। इन उदाहरणों में खास बात यही है कि उन्होंने न केवल वो धन जो पाप से या गलत तरीके से कमाया था, उसे अच्छे कामों में लगाया, जैसे ज्ञान बढ़ाने में या धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाने में, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर उन्होंने अपना बाकी का पूरा जीवन ही लगा दिया उन गलतियों के असर को मिटाने में और समाज में सही ज्ञान, सकारात्मकता फैलाने में। मतलब उनका पूरा जीवन ही एक प्रायश्चित बन गया।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायश्चित सिर्फ कुछ पैसे दान करने या कोई एक कर्मकांड करने तक सीमित नहीं है, ये तो पूरी जीवन शैली बदलने वाली बात हो गई।
हाँ, पूज्य गुरुदेव इसी बात पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं जिन गलतियों से दूसरों को तकलीफ हुई, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचा, उनका प्रायश्चित सिर्फ पैसे से कैसे हो सकता है?
सही बात है।
उसके लिए तो अपना समय, अपनी मेहनत, अपना उत्साह, यानी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगाना पड़ता है। वो कहते हैं कि जिस जोश और ऊर्जा से बुरे काम किए थे, लगभग उसी या उससे भी ज्यादा जोश से अच्छे काम करके उस नेगेटिव असर की खाई को पाटना पड़ता है। यही असली प्रायश्चित है।
ये तो कर्मों का संतुलन बनाने जैसा हो गया।
हाँ, एक तरह से बिल्कुल वही है, कर्मों का संतुलन साधना।
ये प्रायश्चित की एक बहुत ही सक्रिय और मैं कहूंगा जिम्मेदार व्याख्या है। अच्छा, अब आते हैं तीर्थ यात्रा पर। इसका क्या किसी पवित्र जगह पर बस घुमाना ही तीर्थ यात्रा है? पूज्य गुरुदेव इस पर भी बहुत साफ राय रखते हैं।
हाँ, वो तो बिल्कुल साफ कहते हैं, नहीं, सच्ची तीर्थ यात्रा को वो पर्यटन या सिर्फ घूमने फिरने से एकदम अलग मानते हैं।
अच्छा।
हाँ, उनके अनुसार वो तो बस मनोरंजन है, सैर सपाटा है, उसका आध्यात्मिक शुद्धि से कोई सीधा लेना देना नहीं है। सच्ची तीर्थ यात्रा का स्वरूप तो वो बताते हैं, धर्म प्रचार की पदयात्रा।
धर्म प्रचार की पदयात्रा, ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि ज्ञान और अच्छे विचारों को लेकर लोगों के बीच जाना, पैदल चलकर गांव गांव जाना, लोगों से मिलना, उनसे जुड़ना, उन्हें जीवन सुधारने वाले अच्छे उपदेश देना,
जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि करते थे।
बिल्कुल, जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि अलख जगाते हुए घूमते थे, घर घर जाकर ज्ञान की बात करते थे, या जैसे आज भी हम देखते हैं जो कांवर यात्री होते हैं, वो रास्ते भर भजन, कीर्तन, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की बातें करते हुए, सुनाते हुए चलते हैं।
तो मतलब इसमें मंजिल से ज्यादा जरूरी वो रास्ता और रास्ते का उद्देश्य है, घूमना नहीं, लोगों को जगाना।
बिल्कुल सही। उद्देश्य ही सब कुछ है। उद्देश्य है जन जागरण, मतलब लोगों में चेतना लाना। फिर है विचार क्रांति, यानी उनके सोचने के तरीके में बदलाव लाना। और लोक मानस का परिष्कार, मतलब समाज की सोच को बेहतर बनाना।
समझ गया।
तो इसीलिए लोगों से संपर्क साधना, पद यात्रा करना और धर्म का सही अर्थ समझाना, ये तीनों चीजें मिलकर ही सच्ची तीर्थ यात्रा बनती हैं। स्थान का अपना महत्व है, पर उससे कहीं ज्यादा महत्व है कि आप वहाँ किस प्रक्रिया से और किस उद्देश्य से पहुँच रहे हैं।
ये तो बहुत अलग नजरिया है। पूज्य गुरुदेव ने आज के समय के लिए भी तो कुछ रास्ते सुझाए हैं ना? शायद आजकल पदयात्रा हर कोई ना कर पाए।
हाँ हाँ बिल्कुल, उन्होंने आज के जमाने के हिसाब से भी तरीके बताए। जैसे वो कहते हैं साइकिल यात्रा करो, उसे भी वो पदयात्रा जैसा ही मानते हैं, क्योंकि उद्देश्य वही है, लोगों तक पहुंचना।
अच्छा।
या फिर जैसे दीवारों पर खड़िया मिट्टी से या सस्ते रंगों से अच्छे प्रेरणा देने वाले विचार लिखो। सोचिए एक छोटा सा वाक्य कितने लोगों को दिन भर में अच्छी सोच दे सकता है।
हाँ ये तो बहुत अच्छा तरीका है।
और उन्होंने ढपली बजाकर गीत संगीत के माध्यम से संदेश देना, छोटी छोटी जगहों पर सत्संग करना, ऐसे कई तरीके बताए। मूल बात ये है कि आप किसी भी क्रिएटिव तरीके से ज्ञान का प्रकाश फैलाएं।
और जो तीर्थ स्थान है हमारे, जैसे काशी, मथुरा, हरिद्वार, उनका क्या महत्व है फिर? अगर यात्रा का असली उद्देश्य ज्ञान फैलाना है तो इन जगहों का क्या रोल है?
देखिए, उन स्थानों का अपना महत्व है, लेकिन वो महत्व सिर्फ वहाँ पहुँच जाने भर से नहीं मिल जाता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जगह असल में साधना, तपस्या और आत्म परिष्कार, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के केंद्र थे और होने चाहिए।
अच्छा।
वहाँ का जो सात्विक और शांत वातावरण होता है वो आत्मनिरीक्षण यानी खुद को जानने और आत्म परिशोधन यानी खुद को सुधारने में मदद करता है। जैसे उन्होंने शांति कुंज में होने वाले कल्प साधना शिविरों का उदाहरण दिया है।
हाँ सुना है उनके बारे में।
जहाँ लोग एक तय समय के लिए रहकर आत्मचिंतन और साधना करते हैं। पुराने जमाने में तो इन तीर्थों में अक्सर बड़े बड़े गुरुकुल और शिक्षण केंद्र भी होते थे।
और वहाँ ये जो मुंडन कराने की प्रथा है, सिर मुंडवाने की, उसका भी कोई गहरा मतलब है क्या?
हाँ, उसका भी एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक मतलब है। वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने पुराने बुरे नेगेटिव विचारों और आदतों को त्याग रहा है, जैसे सिर से कोई बोझ उतार रहा हो और एक नई उज्जवल सकारात्मक भविष्य का संकल्प ले रहा है।
अच्छा, मतलब एक नई शुरुआत का प्रतीक।
बिल्कुल, ये एक बाहरी क्रिया है जो अंदर के बदलाव का प्रतीक है। तो तीर्थ स्थान आत्म सुधार का संकल्प लेने और उसके लिए प्रेरणा पाने की जगह है, न कि सिर्फ पाप धोने की कोई मशीन।
तो कुल मिलाकर अगर हम पूज्य गुरुदेव के इन विचारों का सार निकालना चाहें तो क्या कहेंगे, क्या है निचोड़?
निचोड़ मेरे ख्याल से यही है कि सच्ची तीर्थयात्रा और सच्चा प्रायश्चित, ये दोनों ही सिर्फ बाहरी कर्मकांड या कुछ दान पुण्य करके निपटाए देने वाली चीजें नहीं है। ये दोनों ही अपने जीवन को सक्रिय रूप से सुधारने, समाज में अच्छाई और ज्ञान फैलाने और अपने समय, अपनी मेहनत, अपने उत्साह को अच्छे कामों में लगाने की एक लगातार चलने वाली, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये अंदरूनी बदलाव और बाहरी सक्रियता का एक मेल है।
ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। जो हमारी पारंपरिक धारणाएं हैं उनसे तो काफी हटकर है ये।
बिल्कुल। और यह अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा करता है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अपने लेवल पर, छोटे या बड़े रूप में, जो भी जाने अनजाने गलतियां होती हैं, उनकी वास्तविक भरपाई करने के लिए और समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्या हम सक्रिय रूप से कुछ कर रहे हैं? क्या हमारी तीर्थ यात्राएं सिर्फ घूमना फिरना है, या उनमें वाकई ज्ञान के लेन देन का, सीखने सिखाने का कोई तत्व है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।